Amor, no te vas de allá. Amor, no te vas de allá. No te vas de allá. ततश्च सौरी भगवत प्रचोदिता सुतं समादाय स्वसूतिकाग्रहा जटा बहिर्गन्तुं वेषतरहजा या योग माया जरिनन्द जाया प्रत्यय सर्ववृत्ति दस्ते सुपौरे सुखसाहित सता द्वारस्थ सर्वा पिता दुरतया निहत कपाटा सकेल श्रृंखले
Thank you. श्री श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं तो कृष्ण एक ही समय देवी के पुत्र तथा यशोदा के पुत्र के रूप में आत्मशक्ति योग माया के साथ उत्पन्न हुए। देवी के पुत्र के रूप में सर्वप्रथम विष्णु ने प्रकट हुए और वसुदेव ने अपने पुत्र की पूजा भगवान विष्णु के रूप में की क्योंकि वह कृष्ण से शुभ संबंध निकला था। जो माया के प्रभाव से सारे द्वारका गहरे उनकी इंद्रियां स्थिर हो और घर के अन्य लोग भी गहरे नींद सो गए। जिस प्रकार सूर्य के उदय होने पर अंधकार स्वतः छिप जाता है उसी तरह वसुदेव के प्रकट उसी तरह वासुदेव के प्रकट होने पर लोहे की किरणों से जड़े तथा भीतर से लोहे की जंजीरों से जकड़े हुए बंद दरवाजे स्वतः हो गए क्योंकि आकाश में बादल मंद मंद गर्जना कर रहे थे और झड़ी लगाए हुए थे। अतः भगवान के अंश अनंतनाथ दरवाजे से ही वसुदेव तथा दिव्य शिशु की रक्षा करने के लिए अपने फण फैलाकर वसुदेव के पीछे लग गए। भगवान का अंश है और उसका काम है कि सारे स्थान सामान के साथ भगवान की सेवा करें। जब वसुदेव शिशु को ले जा रहे थे तो शेषनाथ भगवान की सेवा करने तथा वर्षा की हल्की हल्की बूंदों से उन्हें बचाने के लिए प्रकट हुए। जब शिशु भगवान की सेवा
जय श्रील प्रभुपाद तत्सव तब इसके बाद एक कथा या स्मरण करनी चाहिए। जब भगवान जन्म लिए माता देवकी के गर्भ से सबसे पहले वसुदेव जी ने भगवान की स्तुति किया। वे निर्भय थे, उनको कंस से कोई भय नहीं था। लेकिन इसके बाद जब माता देवकी स्तुति करने लगी तो वो बहुत भयभीत थे कंस से। वो भगवान से कहती है उपसंग रविस्वात्मन अधो रूपम लौकिकम, हे प्रभु आप इस रूप में प्रकट मत होइए, क्या अलौकिक रूप है कि चार भुजा से है, सारे आभूषण आपके शरीर पर चमक रहे हैं। मैं चाहते हूँ कि कौन से ये बात जान पड़े कि आप हमारे गर्भ से जन्म लिए हैं। अन्यथा वो आपको मारेगा। मैं आपके लिए डर रही हूँ। कौन से बड़ा दुष्ट है, आपके जन्म की प्रतीक्षा कर रहा है। आपका जन्म सुनते ही वो आएगा हाथ में तलवार लेकर और आपको मार देगा। वसुदेव जी भगवान को भगवान समझ करके निर्भय थे। कौन से आवे या कौन से का दादा आवे कोई कुछ नहीं कर सकता। और वहीं पर माता देवकी बहुत रो रही थी, भगवान से कह रही थी कि जन्म तन्मय सब पाप माँ विद्यान मधुसूदन, हे मधुसूदन मधु जैसे दैत्य का विनाश करने वाले मैं जानती हूँ कि आप मधुसूदन हैं, लेकिन मेरा नारी का हृदय है ना, मैं डर रही हूँ तब किसी प्रकार से कौन ये ना जान पाए कि आप मेरे गर्भ से जन्म लिए हैं। इसके लिए उपाय मैं बता रहे हैं, आप इस रूप को छिपा लीजिए, इस चतुर्भुज भगवत स्वरूप को छिपा लीजिए। तो भगवान ने कह दिया माँ इससे तुम्हारी प्रतिष्ठा होगी, लोग सुनेंगे कि देवकी ने भगवान को जन्म दिया तो तुम्हारी प्रतिष्ठा होगी, तुम घबराओ मत। तब देवकी जी कहते हैं हमें को प्रतिष्ठा नहीं चाहिए, मैं चाहती हूँ तुम जियो देख जी रहो, भले दुनिया जाने या न जाने। और असली बात है कि जगत के लोग जब सुनेंगे कि देवकी कहती है कि हमारे गर्भ से भगवान जन्म लिए हैं तो इससे हमारी प्रतिष्ठा नहीं होगी, और लोग हंसी लाएंगे, कहेंगे क्या हुआ है पगली देवकी को, जो भगवान सारे जगत को अपने एक अंश धारण करते हैं वो इसके गर्भ में अट सकते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता है, कोई विश्वास नहीं करेगा। हमें इसकी कोई आकांक्षा नहीं है कि हमको भगवान की माँ कहे, देवकी जी रो रही थी, उनका सारा शरीर आंसू से भीगा था, वसुदेव जी तो साफ कह दे कि बिंतु सी आपको मैं जानता हूँ, आप परम पुरुष हैं, ईश्वर हैं, लेकिन देवकी चिंता कर रहे थे। इसीलिए भगवान अपने तीन जन्म की कथा सुनाने लगे माता देवकी को, तुम प्रथम सृष्टि में कृष्ण थी और ये वसुदेव सुतपा नाम के प्रजापति, आप लोगों ने द्वादश वर्षों तक दिव्य द्वादश वर्षों तक तपस्या किया, प्राणायाम किया, आपकी तपस्या से प्रसन्न होकर मैं जब आपको वर देने के लिए आया तो आपने यही वर मांगा कि हम आपके समान पुत्र चाहते हैं। आप चाहते थे कि जब भगवान कहें कि मैं आपका पुत्र बनूंगा तब हम इंद्रिय संग करेंगे, उसके पहले नहीं। जब मैं वचन दे दिया कि मैं आपका पुत्र बनूंगा तब आप लोगों ने ग्राम सुख होगा। चूंकि मैं वचन को पूरा नहीं कर सकता था इसलिए तीन जन्म लिया। प्रथम जन्म में मैं बामन बना, छोटा शरीर होने के कारण लोग मुझे बामन कहते हैं। दूसरे जन्म में मैं आपका पुत्र हुआ, मेरा नाम राम नाम पड़ा और तीसरे जन्म में मैं कृष्ण हूँ। इस तरह से भगवान ने बताया, बिना मेरे जन्म को बताए किसी को मनुष्य शरीर से मेरा ज्ञान नहीं हो सकता। अतः मां चिंता मत करो। फिर वसुदेव जी से भगवान ने कहा, पिताजी यदि आप बहुत डरते हैं कंस से तो मुझे गोकुल पहुंचा दीजिए, नंद बाबा के घर। तो यहां से यह श्लोक है, ततश्च भगवान की आज्ञा पा करके श्री वसुदेव जी सुतम सुना जाए। अजीब श्लोक है, भगवान ने प्रेरणा दिया लेकिन वसुदेव जी के लिए सुदेव शंकर है, भगवान को लेकर नहीं, सुतम समाधाय पुत्र को लेकर चल रहे। बात कर रहे थे तो भगवान के प्रति भाव था कि ये प्रभु हैं, भगवान हैं। और जब पुत्र को उठाना हुआ तो ये भावना है कि मेरा नवजात शिशु है, बहुत कोमल शरीर है। पुत्र को उठाते समय यही भाव हुआ कि मेरा पुत्र है, भगवत भाव नहीं रहा। श्लोक पर ध्यान दीजिए, भगवत प्रचोदित, भगवान ने आज्ञा दिया तो ये कहना चाहिए कि भगवान को लेकर चले, लेकिन कहते हैं भगवान ने आज्ञा दिया तब अपने पुत्र को समादाय सम्यक आदाय लेकर के सुतिका गृह से चलना चाहे। जब सुतिका गृह से चलना चाहे नंद गांव की तरफ है, नंद गोकुल की तरफ। तो उसी समय जो भगवान की दिव्य शक्ति है योग माया, वो जन्म ली। कहाँ नंद जाया, नंद महाराज की पत्नी के गर्भ से जन्म ली योग माया। तया हेता प्रत्यय सर्वृत्तिषु तस्थेषु पौरुषु विषायितेषु। योग माया ने जन्म लेकर के अपने प्रभाव से मथुरा के सारे द्वारपालों को दस्थेषु और पौरेश्वपति पूर्ववासियों को, मथुरा के निवासियों को, सबको साहित्य सफर सुला दिया। ये भगवान की अद्भुत लीला है। जन्म लिए और उनको ले करके जब उनके पिताजी गोकुल पहुंचाने की चेष्टा किए, तो उस समय तो दरवाजा सब बंद था, उसमें बड़ी बड़ी कपाट लगे थे, बड़े मजबूत कपाट। और उसमें बहुत बड़े बड़े ताला भी लगे थे। दरवाजा बंद थे, ताला लगा था। द्वारस्थ सरदा पिहिता दुरत्य बृहत कपाटा साइकिल श्रृंखले। बड़े बड़े दरवाजे थे, तो उन दरवाजों को बंद किया गया था। कपाट लोहे के कपाट लगे और जंजीरों से बंद किया गया, बड़े मजबूत ताले लगे थे। लेकिन योग माया ने जब जन्म लिया तो पिता जो दरवाजे बंद थे वे अपने आप खुल गए। तो पहरेदार सो गए, यहाँ तक कि पौरे सो अपनी साहित्य से मथुरा नगर के लोग भी सो गए, साहित हो गए, सुना दे गए जो माया द्वारा। सुना दिए गए और यहाँ तक कि उनकी इंद्रियों की वृत्ति कार्य क्षमता वो भी नहीं मिल रही, वे किसी भी इंद्रिय से काम नहीं कर सकते। उनकी इंद्रियां परलाई होंगी, कान सुन नहीं सकता था, आंख देख नहीं सकती, कोई कितना भी पुकारे कोई सुन नहीं सकता कि देखने की तो बात ही नहीं थी। तो जब वसुदेव जी आ रहे थे दरवाजे के पास तो उनकी विशेषता था कृष्ण माय है वसुदेव आ गए थे कृष्ण बाह भगवान को गोद में लेकर के वसुदेव आ रहे थे तो सभी दरवाजे जिनमें बड़े लोहे के किवाड़ लगे बड़े बड़े ताले फिर अपने आप खुल गए को ढो करके आ रहे थे वसुदेव जी। बहुत सुंदर शब्द है कृष्ण वाह है एक बार जब मैं कल्याण पढ़ रहा था सातवीं क्लास में तो भाई जी हनुमान प्रसाद पोदार का लेक्चर छपा था मैं पढ़ रहा था वो लेख पढ़कर मैं बहुत प्रभावित भाई जी ने कहा था जिस प्रकार वसुदेव कृष्ण को लेकर के चले हृदय में नरकटा करके चले तो उनके उनकी सारी बाधाएं दूर हो गई जेल खुल गया पहरेदार सो गए तो भाई जी ने कहा था कि जिस प्रकार वसुदेव के लिए सत्य है सफलता मिली ऐसे कोई भी व्यक्ति यदि कृष्ण को हृदय में रखता है तो उसका माया का कपाट खुल जाएगा काम खोल आदि पहरेदार सो जाएगा। जीवन में कोई बाधा नहीं रहेगी मुख्य बात है कृष्ण को हृदय में रखने के लिए। यदि हम कृष्ण को हृदय में रखते हैं तो हमारे लिए सफलता निश्चित है। गोरख को तो याद करके मैंने पूछा भाई वसुदेव जी तो हृदय में रखे थे भगवान को से बहुत कैसे रख पाएंगे हम? तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मन में रखिए, मन में कृष्ण को रखना चाहिए। इस बात से बहुत उत्साह मिला है। यदि हनुमान प्रसाद पदार जो गीता प्रेस के संस्थापक हैं, उन्हीं को मैं अपना प्रथम गुरु मानता, वहीं पर श्रील प्रभुपाद से जब भेंट हुई तो भाई ने दीक्षा नहीं देते थे, और भाई जी ने स्पष्ट कर दिया प्रभुपाद जी से, प्रभुपाद जी उनके रूम में बैठे थे कुर्सी पर, भाई जी पलंग पर सोए थे। मैं नीचे बैठा था तो भाई जी ने कहा प्रभुपाद जी से, ये चैतन्य महाप्रभु के भक्त है, ये चैतन्य महाप्रभु के भक्त है, आप ले जाइए इनको। तो प्रभुपाद जी ने कहा अभी तो मैं विदेश चला जाएगा, वृंदावन में मंदिर बनाने की चर्चा चल रही है, जब मंदिर बन जाए तो वृंदावन में आकर रहना, प्रभुपाद जी के आगे हूँ, मैं प्रतीक्षा करता रहा कई साल। अंत में ऐसा निर्णय हुआ मैं राधा दामोदर मंदिर में गया था, वहीं पर पता लगा कि प्रभुपाद जी आ गए हैं वृंदावन, उस समय नींव खुदी जा रही थी कृष्णमाला मंदिर की, '73 में नींव खाने गए, और सबसे पहले गेस्ट हाउस बना, मंदिर बाद में बना, और गुरुकुल उसके बाद। प्रभुपाद जी से 1971 में मुलाकात हुई, तो एक भक्त ने हमसे पूछा कि आपकी दीक्षा 6 वर्ष के बाद में 1976 में कितना देर क्यों किया। मैं बताया उनको कि इसलिए कि भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी मेरे गुरु भावना थे, गुरु का त्याग करना, दूसरा गुरु ग्रहण करना इसको अच्छा नहीं माना जाता। रामनवमी को 1976 में इस मंदिर का ओपनिंग हुआ, 75 में हो गया। कृष्ण भगवान की स्थापना हुई। छिहत्तर में दीक्षा लिया। इस प्रश्न पढ़ने पर मुझे याद आ गया भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार, तरह कृष्ण वाहे वसुदेव आलते, लोहे के किवाड़े जिसमें विद्युत ताला लगे थे, जड़ मैटर वो अपने आप खुल गए। इसमें चेतना नहीं है, चेतना ही दरवाजे अपने आप खुलते गए। वसुदेव जी ने कोई जोर नहीं लगाया, केवल कृष्ण को लेकर आ रहे थे, जिस दरवाजे के पास पहुंचते वो अपने आप खुल जाता। स्वयं दोबारा दोबारी अंतर यथात तमोटर है, जैसे रवि के आने पर, सूर्य भगवान के आने पर अंधकार अपने आप नष्ट हो जाता, वैसे ही दरवाजे खुलते गए। वसुदेव जी भगवान कृष्ण को गोद में रहकर जिस दरवाजे के पास आते हैं वह अपने आप खुल जाता है। ऐसे जैसे सूर्य सूर्योदय होते ही अंधकार चला जाता है, तो अंधकार दूर होने में कोई आवाज नहीं करता, इतने स्वाभाविक ढंग से दरवाजे खुलते मिलेंगे। द्वारपाल सब सो गए, नव जन सो गए, केवल सो ही नहीं गए, उनके इंद्रियों की वृत्तियां काम करना बंद कर दिया। ये माया का प्रभाव था, योग माया का। योग माया गुरुकुल विद्या मिली थी, उसका ऐसा प्रभाव था कि मथुरा के सभी लोग सो गए, उनकी इंद्रियां फेर हो गई, कान सुनता नहीं था, जीव से बोल नहीं सकते, पटला शिष्य सामने सभी नगरवासियों को देख नहीं सका, बस देव जी को। रात का समय पुत्र को लेकर के निकल रहे थे, मथुरा का कोई देखा ही नहीं, कोई देखा भी नहीं और बोलने की शक्ति नहीं रही। बोलने की शक्ति नहीं रही, पैर में चलने की शक्ति नहीं रही, हाथ से कुछ काम करने की शक्ति नहीं। आंख में देखने की शक्ति नहीं, इंद्रियों की सारी वृत्तियां स्तंभित हो गई, मतलब काम करने की शक्ति खत्म हो गई। उसे दरवाजे से निकल रहे थे बसुदेव जी, तो द्वारपाल सब सोए मरे जैसे पड़े थे। द्वारस्थ सेना सभी द्वार भीतरी द्वार तो खुल है और बाहरी फाटक जेल का दरवाजा ये सब खुल गए। दरवाजे का शत पीता पीता का बंद है, बंद दरवाजे ताला लगे हुए पर अपने आप खुलते गए। सुखदेव गोस्वामी उदाहरण दे रहे हैं, जैसे गबे सूर्य के कारण अंधकार नष्ट हो जाता है, वैसे वसुदेव जी के आने पर कृष्ण को लिए रूप वसुदेव जी के आने पर वे अपने आप खुलते गए। बड़ी सफलतापूर्वक वसुदेव जी कारागृह से निकाल गए। कोई देखा नहीं, कोई सुना नहीं, यहाँ तक कि वे मथुरा पासी जनता के बीच से गुजर रहे थे। सोए थे गली में, उनके दरवाजे बंद थे, ऊपर से भगवान इंद्र वर्षा कर रहे थे, बहुत घोर वर्षा, इसलिए कि किसी को वसुदेव जी के आने की निकलने की आहट न मिले। भगवान की शक्ति अमोघ है, उनकी अपनी शक्ति पर्याप्त नहीं, फिर भी इंद्र सहायता कर रहे थे वसुदेव जी की। वर्षा के कारण कोई नागरिक बाहर नहीं निकला, सभी दरवाजा बंद करके सोए थे। एक तो जोर माया ने सुला दिया था और दूसरे वर्षा हो रहे थे, और क्या निद्रा में सो गए थे। यहाँ तक कि मथुरा का कोई कुत्ता भी वसुदेव जी को भौंक नहीं सका। बीच में जमुना जी पड़ती थी, जमुना जी को पार करके गोकुल जाना पड़ता। जमुना जी भगवान के चरण को छूना चाहते थे, वसुदेव जी के गोद में भगवान थे, उसके बाद वे कंधे पर रख लिए, लेवल पानी का बढ़ रहा था। जमुना जी में बाढ़ आ गई, भगवान के चरण को छूने इच्छा हो गई, तो वे पहले वसुदेव जी के घुटने तक थे, उसके बाद जांग है, उसके बाद कमर, उसके बाद बक्षस्थल और अंत में कंधे तक बढ़ाए। तो वसुदेव जी भगवान को अपने पुत्र सिर पर रख लिए, यहाँ तक कि बहुत सुंदर टुकड़ी में पर सिर पर रख ली। भगवान ने अपने चरणों को नीचे बढ़ाया, चरण को छू करके जमुना जी बिल्कुल नीचे हो गए। और आसानी से वसुदेव जी पार हो गए। और गोकुल में पहुंचे तो सारे गोप सोए थे, स्त्रियां सब सोई थी। नंद भवन में पहुंचकर वसुदेव जी अपने पुत्र को माँ जसोदा के पलंग पर सुला दिए। भगवान स्वयं उनको गाइड किए थे, मैं जाना है कहाँ यशोदा के घर पड़ेगा। जब वसुदेव जी वहाँ पहुँचे तो गोप सोए थे, गौएं भी सोई थी। यशोदा के पलंग पर सुला दिए अपने पुत्र। और यशोदा के गर्भ से जो माया ने जन्म दिया था, लड़की जन्म दी थी, उसको उठा दिया वसुदेव जी ने। फिर जल्दी जल्दी मथुरा लौट आए। जब तक वे पहुंचे नहीं मथुरा में, तब तक दरवाजे एकदम खुले रहे और पहरेदार मरे जैसे सोए थे। निकलते समय और प्रवेश करते समय नहीं देख पाए उसने भी। मथुरा पहुंच करके उन्होंने नंद महाराज की पुत्री को देवी के बेड पर सुला दिया। देवकी के गोद में आ जाने के बाद तब जो मैंने नाटक किया, पहले नहीं रोई थी, अब जैसे नया बच्चा जन्म लेते हैं रोते हैं, वैसे नाटक चालू की, रोना चालू की। और बालक के रोने की आवाज़ सुनकर पहरेदार जगे, क्योंकि कौन से उनको नियुक्त किया था, जो आठवें संतान के जन्म की खबर मुझे देगा तो मैं उसको इतना इनाम दूंगा। परंतु वे बहुत लेट कर गए। आठवां पुत्र हुआ वो तो चला गया गोकुल। हंस सुना दर पालू जेल पालू, दौड़ करके सुनाए राजन राजन। आठवां पुत्र जन्म दे लिया, कोई ये नहीं जाना कि ये पुत्र है कि पुत्री। कौन से जा करके कहे, कौन से जल्दी जल्दी में अपने भवन से खड़ा जो है मैं आया, तो देवकी विनय करने लगी, रोने लगी, कहने लगे भैया ये पुत्र नहीं है, ये तो पुत्री है, आपका ये कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी, आप इसे छोड़ दीजिए, यहाँ आपके पुत्र वधू बनेगी, मैं इसका विवाह कर दूंगी आपके पुत्र से। यह आपकी पुत्र वधू के समान है, मेरे बहुत से पुत्र आपने मार दिए, मेरे बहुत से तेजस्वी पुत्र आपके द्वारा मार दिए गए, उस अंतिम संतान को छोड़ दीजिए, लेकिन वह राक्षस देवकी की प्रार्थना पर ध्यान नहीं दिया, तुम मेरे शत्रु की जननी हो, देवकी कहती रही आपका शत्रु कोई नहीं है, बड़े दीन स्वर से मां देवकी रो रही, पर कुछ भी कहीं वो राक्षस माना नहीं, देवकी गोद में ले करके बच्चे को बैठे थे, उसके गोद से जबरदस्ती छीन लिया, हाथ से पकड़ कर दाहिने हाथ से पकड़ करके कन्या बच्चे के पैर को, वह तुरंत पत्थर पर पटका, जात मात्रा तो केवल जन्म लेते, कहते हुए तू पूर्व जन्म में ही मुझको मारा था, और इस जन्म में स्त्री बनकर आया है, मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं, एक कहकर के पत्थर पर पड़ गया, कोमल बच्चे को देवकी रो रही थी, प्रपंच में सौहार्द कहां था, बच्ची को पटक दिया, पटकने जा रहा था, तब तक उसके हाथ से सड़क कर उंगली ऊपर चली गई, उसके हाथ से नीचे नहीं आई, वो पटका। लेकिन बच्ची तो भगवान की शक्ति का अवतार थी, तुरंत आकाश में चली गई। कुछ दूर जाने के बाद उसने कंस को सुना कर कहा, मुझको मारने से तुमको क्या लाभ होगा, तुम्हारा पूर्व शत्रु तुमको पहले मारने वाला, तेरा शत्रु जन्म ले चुका, कहीं जन्म ले चुका है, जब माया ने यह नहीं कहा कि यही जन्म लिया, कहीं जन्म ले चुका, तुम व्यर्थ बच्चों की हत्या मत करो। इतना कह करके देवी आकाश में चली गई बहुत दूर, और उसे ज्योति निकल रही थी। वास्तव में वह माँ दुर्गा थी। उसके आठ हाथ में आठ आयु धारण की थी, धनुष मलेश चरमा से शंख चक्र गदा था। एक हाथ में धनुष, दूसरे में त्रिशूल, तीसरे में बाण, चौथे में शंख, पांचवे में स्वर्णधार, शंख चक्र गदाधर, और तीन हाथों में शंख चक्र और गदा। इस तरह से माता दुर्गा जी दिखाई पड़ी। सवेरा होते ही हंस बुलाया अपने मंत्रियों को। मंत्री कौन थे? बकासुर, अघासुर, पुतना वगैरह, कंस एक तो अपने आप ही चौपट बुद्धि का था, उसके मंत्री उसको राय देने वाले सब दैत्य थे, देवताओं से उनका स्वाभाविक वैर रहता है। दैत्य तब चिंता मत कीजिए, सरकार हम उपाय करें, विष्णु आपको मारने वाला है। जन्म ले चुका है ऐसा माता दुर्गा ने कहा है। मेरी इष्ट देवी बोली है, विष्णु कहीं जन्म ले चुका, तू उपाय करो। मंत्रियों ने पूछा, आप ध्यान से सुने, कंस का भी हाँ बिल्कुल ध्यान से सुना, और माता दुर्गा ने भी कहा कि व्यर्थ बच्चों की हत्या मत करो। यह सुनकर के दुष्ट मंत्रियों ने क्या राय दिया, ते बोले एवं चेतर हिताय भोजन राग। यदि ऐसी बात है कि आपको मारने वाला पहचान ले चुका तो जितने नगर हैं और जितने गांव हैं और हीरो की बस्तियां हैं, छोटे छोटे टोला, सब जगह हम लोग घूमेंगे। कोई भी बच्चा 10 दिन का हो चाहे 10 दिन से ज्यादा का, उसका मुख को मार देंगे। विष्णु जन्म लिया होगा तो 10 दिन का होगा चाहे 10 दिन से ज्यादा। आप ही बताइए माता दुर्गा की बात से क्या लगता है, कितने दिन का होगा? कंस कहा कि हमको तो साफ पता नहीं चला, माता दुर्गा ने कहा कि वो जन्म ले चुका है। तो 10 दिन का होगा या मान लो 1 महीने। तो उन लोगों ने कहा ठीक है, 1 महीने के जितने भी बच्चे मथुरा में जन्म लिए हैं, मथुरा मंडल में जन्म लिए, उनको हम मार देंगे। बताइए, माता दुर्गा ने कहा कि बच्चों की हत्या मत करो, और उल्टा आप सोच रहे हैं मंत्री लोग। हम मार देंगे, कौन से कहा कि देवता सब विरोध करेंगे, तुम लोग बच्चों को मारोगे तो देवता सामने आ जाएंगे। तब एक दुष्ट मंत्री मकासुर धनकासुर आदि क्या करेंगे देवता विरोधी होकर। कुछ देवता तो आपके धनुष की टंकार सुन करके बहरे हो गए, कुछ आपके बाणों की वर्षा से त्रस्त हो जाते हैं, कुछ देवता पगड़ी खोल करके शिखा खोल करके और माफी मांगते हैं कि सरकार हम जो भजन कर रहे हैं छोड़ देगी। और आपकी बहुत बड़ी गलती है कि देवताओं को आपने छोड़ दिया। खैर, जो भी गलती हुई अब नहीं होनी चाहिए। आप मान लीजिए कि देवता हमारे शत्रु हैं, कुछ मंत्र कहते थे, देवताओं में विष्णु को प्रधान है तो कुछ दैत्य कहते हैं। प्रधान तो है लेकिन उसका पता नहीं है कि कहाँ रहता है। जुसा के महाराण हरि विष्णु एकांत में रहता है। एकांत कहाँ? समुद्र में शिव का रहता है, क्षीर सागर में। और दूसरा बलवान देवता है शिव, संभुना बनाओ का सर। शिव बनवासी है, ब्रह्मा वा तपस्या था। और जहाँ तक ब्रह्मा की बात है, ब्रह्मा तो तपस्वी है, मैं सब तपस्या में लगा रहा हूँ। उसके बाद है इंद्र, किलिंगा और बबिलिंगा। इंद्र में कोई शक्ति नहीं है, फिर भी देवताओं को कमजोर समझ करके छोड़ नहीं देना चाहिए। देवताओं का मूल विष्णु है, बहुत सुंदर नीति सिखा रहे हैं। सरकार यदि शत्रु को छोड़ दिया जाता है तो कमजोर शत्रु भी समय के अनुसार अपनी सेना बढ़ा देता है। उदाहरण दे रहे हैं, कोई शरीर में रोग हो जाए तो उसको कमजोर नहीं समझना चाहिए। रोग जब अपनी जड़ जमा लेता है तब वह चिकित्सा से सुनता नहीं, तो रोग को कमजोर नहीं समझना चाहिए। तो मूल को खाना चाहिए, विष्णु को खाना चाहिए। तो मिलेगा ही नहीं तो कैसे खाओगे? विष्णु के मूल है सनातन धर्म। सनातन धर्म मूल है गौ ब्राह्मण वेद दीक्षा यज्ञ। जहाँ यज्ञ है यहाँ ब्राह्मण है, जहाँ गौ है वहाँ सनातन धर्म बढ़ता है। तथा विष्णु कुमार ने कह लिया कहता है कि यज्ञ न होने दिया जाए हमारे राज्य में, कोई तपस्या न करे, सब भोगी हो जाए, वेद कोई पढ़े न, और प्रभु यज्ञ कराने वाले न रहे। ब्राह्मण यज्ञ कराते हैं, ये विष्णु के शरीर है, और यज्ञ में हवि देती है गौ, उस गौ के घी से देवता पोसे जाते हैं, यज्ञ में यज्ञ भाग भी लेते हैं। तो विष्णु को मारने का उपाय है सनातन धर्म को नष्ट करना, और सनातन धर्म नष्ट हो जाएगा जहाँ ब्राह्मण नहीं रहेगा। तो इसलिए इसमें ही एक जितने ऋषि लोग हैं, जितने ब्राह्मण हैं, मुनि हैं, इनका वध कर दिया जाए। यह बात सुनकर कंस बहुत प्रसन्न हुआ, ठीक कहते हो, ब्राह्मण ही मूल है सनातन धर्म में, तो आज्ञा दिया, ठीक है, धर्म पृथ्वी में सब जगह जाओ और ऋषियों मिहिर समान ब्राह्मण की हत्या करो, जिससे कि वेद न पढ़ा जाए, यज्ञ न हो, तो ब्राह्मण और गौ इनका वध करो। इस प्रसार आज्ञा है कंस की। भगवान अवतार लिए विशेष करके गौ रक्षा के लिए, गोकुल चले गए, मुख्य उद्देश्य था गौ का पालन करना। दोनों भाई गौ की रक्षा करते हैं, क्योंकि बलराम जी खेती के इंचार्ज हैं, हल रखते हैं, लेकिन वे भी गौ पालन नहीं करते रहते हैं। बहुत बड़ी शिक्षा है, हम भी यदि भगवान के भक्त हैं तो गो रक्षा करना हमारा धर्म है। श्री प्रभुपाद गो रक्षा और कृषि पर बहुत जोर देते थे, इसमें हमारे भारतवर्ष में प्राण निष्ठा ऐसे बने हैं जिनकी को रक्षा पर विशेष जोर है। हरे कृष्ण जय श्री प्रभुपाद।